એક 1090 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 256 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું લીડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 52.
वास्तविक तो यही है तो फिर उत्तर दूसरा भी कैसा है? वास्तविक तो वस्तु स्थिति यही है तो उत्तर भी दूसरा कैसा है?
वही हो नहीं सकता, असंभव है।
और जब तक ये वस्तु स्थिति का इस जीव को ख्याल नहीं आता है, मूल्यांकन नहीं आता है, तब तक परमेश्वर बुद्धि इसको आ नहीं सकती और तब तक इसका भ्रम भ्रमण कर।
ये तो कहा है कि उसको मार्ग प्राप्ति परम विकट है, ये अंतर दिखने में आता है, उसको मार्ग प्राप्ति बहुत विकट है, पर जिसका ये अंतर छूट गया उसको मार्ग प्राप्ति परम निकट है। ये परम निकट है, ये परम निकट है, एक अक्षर बदलना है, दूसरा अक्षर नहीं बदलना है, वह की जगह न कर देना, बस ये निकट वाला निकट हो जाएगा, बाकी वो कहेंगे।
अध्यात्म की परम रहस्य बहुत बात परम कृपा देने खोली है,
कितनी आसानी से शास्त्र पढ़ पढ़ करके मर जाए तो ये पता नहीं चले, निकालो कहीं से उपलब्ध दैन मान में से निकालो, ये चीज नहीं निकलेगी। अरे लिखा है कि ये जो भागवत वाली गोपांगना की बात हमने लिखी है वो हमारे आत्मदर्शन में से लिखी है, ऐसा कहते हैं पीछे एक पत्र में बताया। आपने वो बात कैसे लिखी? मैंने आप तो श्री कृष्ण के समय में थे नहीं, न तो आपने श्री कृष्ण ने देखा, न तो आपने गोपांगनाओं को देखी है, देखी है तो कैसी भक्ति करते थे, लेकिन जब ये भागवत में वो बात आती है आपने वो कैसे आराम किया को इस तरह देखती थी, तो हमने हमारे अनुभव से पूर्व भव में अपने श्री गुरु के प्रति उन्हें कैसे प्रेम किया, कैसे भक्ति की, कैसा एक भाव हुआ, ये बात हमको स्मरण है। उसका वो बात बताने के लिए दृष्टांत दे दिया भागवत का, लेकिन हमारे आत्मज्ञान से ये बात हमने जानी है। तो भगवान ने प्रश्न पूछा है, आपने ये बात कैसे बताई? हमारे आत्मज्ञान से बताई, हमने स्पष्ट लिख दिया है 1400 साल के तो बात। इसलिए फिर कहते हैं कि ज्ञानी तो परमात्मा ही है नहीं कहा, परमात्मा ही है, और उसकी पहचान के बिना परमात्मा की प्राप्ति अनंत काल में नहीं हुई है। इसका यही कारण है कि ज्ञानी की पहचान
नहीं,
इतना रहस्य है, इतना बड़ा रहस्य है, संसार को पार हो जाए, पहचान करे तो संसार से पार हो जाए, तो नहीं पहचान करो तो अनंत काल भटकता है, वो भटकता ही रहेगा। इसलिए सर्वथा भक्ति करने योग्य, कैसे नवधा भक्ति बोला ना, सर्वथा सभी प्रकार से भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्य मूर्ति, क्या मतलब देहधारी है लेकिन दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा की, ज्ञानी रूप परमात्मा की देहधारी दिव्य मूर्ति है, उसको हमारे तो खाली जगह रखे, आप तो खाली जगह रखे क्या परमात्मा की, फिर डॉट डॉट कर दिया रखे खाली जगह, ब्लैंक रखा है क्या दश किया
है दिव्य मूर्ति
परमात्मा की, को नमस्कार आदि भक्ति से लेकर वंदन से लेकर पराभक्ति के अंत तक एक ले से आराधन करना।
अर्थ किया उसका, मतलब ऐसा भी लंबा आयतन करते हैं किया
इसमें
के दिव्य मूर्ति एटले के ज्ञानी रूप परमात्मा ने,
पछि फिर
देश किया ने
परमात्मा की
और दिव्य मूर्ति ने
बीच में डैश है
जी।
ये पत्र को भी देखना है। नोट कर लो ना।
देहधारी मूर्ति ने
1947 फागुन में
14 दिव्य मूर्ति ने एवी रीते लेस का दिव्य मूर्ति ने नमस्कार ने भक्ति थी
એવી રીતે બે અર્થ બે અલગ કર્યા છે દેહધારી મૂર્તિ અને જ્ઞાની પરમાત્મા બે વાક્ય અર્થ કર્યા છે બે અર્થ કરીને પછી વળી વાત
બરાબર
ડોટ નથી લેવું જોઈએ અર્થાંત કરવું જોઈએ
ગુજરાતીમાં બરાબર છે नमस्कार आदि भक्ति से लेकर पराभक्ति के अंत तक एक लय से आराधन करना ऐसा शास्त्र का आशय है। सभी शास्त्रों में ये आशय है ऐसा कहा है। ऐसा नहीं है कि ये जिनागम में ये बात नहीं है, ये तो श्रीमद जी की बात है, जिनागम की नहीं है, ऐसी बात नहीं है, शास्त्र में है ऐसा। परमात्मा इस देहधारी रूप से उत्पन्न हुआ है किसके लिए? मेरे लिए। अवतार की बात भी यहां से चली है। जैसे अवतार अवतार नहीं होता है, चौबीस अवतार, लेकिन ये भक्त को ऐसा लगता है कि ये देहधारी दिव्य मूर्ति मेरे लिए, इसका जन्म हुआ है, इसका अवतार मेरे लिए हुआ है, ऐसा उनको भाषित होता है। इसलिए अवतार की बात निकले तो स्थापित कर दी है, ये बात पुष्ट हो गई। वहां से ऐसे ही ज्ञानी पुरुष के प्रति जीव को बुद्धि होने पर, ज्ञान होने पर नहीं, अभिप्राय हो जाता है, बुद्धि होने पर ऐसे भक्ति यथार्थ भक्ति उदित होती है। जब कभी उनको यथार्थ भक्ति उदित होती है और वह भक्ति शुरू होकर के क्रमशः आगे बढ़ करके पराभक्ति रूप हो जाती है। इस विषय में श्रीमद् भागवत में और भगवद गीता में बहुत से भेद प्रकाशित करके इसी लक्ष्य की प्रशंसा की है, इस आशय की, इस लक्ष्य की, इस गंभीरता के, इस रहस्य की प्रशंसा की है। अभी क्या कहना, ज्ञानी तीर्थंकर देव में लक्ष्य होने के लिए जैन धर्म में भी पंच परमेष्टि मंत्र में नमो अरिहंतान पद के पीछे सिद्ध को नमो सिद्धान नमस्कार किया है। बड़े प्रसिद्ध हैं, उनको 13वें गुण स्थान में है और सिद्ध तो 14 से भी ऊपर में है, उस स्थान से अतिक्रांत होकर के सिद्ध हुए हैं। तो भी अरिहंत को पहले नमस्कार किया और सिद्ध परमात्मा को पीछे रखा, यही कारण है इसका, यही संकेत है, यही रहस्य है इसमें। आप कहेंगे कि शास्त्र में कहाँ है, शास्त्र में ये बात कहाँ है कि ज्ञानी को पहले नमस्कार करो प्रत्यक्ष को और परोक्ष को पीछे रखो, भले तीर्थंकर हो गए तो महावीर स्वामी हो गए तो कि ये अनादि से ये बात चली है, नमस्कार मंत्र में तो अनादि से, तेरा ध्यान नहीं गया कभी, क्योंकि नमस्कार मंत्र में तो ये बात अनादि से स्थापित है। किसने स्थापित बताइए? अनादि से, अनादि से है, मैंने यही बाय नेचर है ये बात, ये समझ रहे, जो कृत्रिम नहीं है उसको अकृत्रिम कहते हैं, नेचुरल कहते हैं इसको, जैसे अगर कृत्रिम प्रतिमाएं होती है जो प्रतिमा को उड़ाते हैं उसको कहते हैं, तो प्रतिमा को हम लोग कृत्रिम स्थापते हैं, लेकिन इस विश्व में जो अनादि से अकृत्रिम है इसका मतलब क्या होता है कि वो तो बाय नेचर है, नेचुरली ये तो बात होती है, तो उसका तो निषेध नहीं किया जा सकता। निषेध करने वाले का माथा फूट जाएगा, लेकिन निषेध करना, निषेध इसका करने से भी कुछ होने वाला तो प्रतिमा का निषेध कर दिया, लेकिन इसका निषेध करने वाले को नुकसान होगा, प्रतिमा से प्रतिमा का निषेध हो जाएगा क्या, जो शाश्वत है वो कोई अशाश्वत हो जाएगी क्या, ये तो बनने वाली चीज।
ऐसे हो रहा था कि दृढ़ गुण परिवार से अनंत को जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, तो इसमें ये प्रत्यक्ष का इसी से
इसमें सिद्ध परमात्मा पर बात नहीं है, वहाँ भी अनंत परमात्मा जानता अनंतम बल पे गुण पिता जाए थे अनंत शब्द लिया है, वहाँ भी सिद्ध शब्द नहीं लिया। और भाव भाषण में अपना सिद्ध आत्मा आता है, भाव भाषण में जो आता है वो निज सिद्ध पद आता है, क्योंकि एक गुण स्थान से पार है, जैसे वो सिद्ध भी गुण स्थान से पार है, ऐसे मेरी आत्मा भी 14 गुण स्थान से पार है, इसलिए वहां सिद्ध पद आता है। तो आप थोड़ा भी हेरफेर करें ना तो सिद्धांत टूटता है, कहीं भी थोड़ा भी हेरफेर करें तो सिद्धांत टूटता है। जैसे तुझी बहन श्री को गुरुदेव के प्रति बहुत भक्ति थी, नेश्वर की जिसको अपना परमात्मा दिखा है, फिर बात चली देशानंद थी कि गुरुदेव के प्रवचन पढ़े, गुरुदेव की टेप पढ़े, टेप रहेगी और वीडियो भी रहेगी, ज्ञान हो के नहीं हुए, संस्कार मिले कि नहीं मिले, देशानंद मिले कि नहीं, ना दे दिया, भक्ति कब नहीं होती
वस्तु स्थिति
सिद्धांत
सिद्धांत
है, ये भक्ति की बात जो भी है वो सैद्धांतिक है, सिर्फ ये उपदेश बोध की बात नहीं है, उपदेश बोध और सिद्धांत बोध दोनों एक में शामिल है, दोनों एक में आ जाता है, अभेद रूप से भिन्न नहीं कर सकते।
हमने इसको अध्यात्म का रहस्य कहा है,
इसका इसको अध्यात्म का रहस्य, बहुत आसान तरीका है। पराभक्ति मन पराभक्ति विशेष पा इतने लास्ट पीछे अगर न होए ते सर्वोत्कृष्ट यानी पराभक्ति वेदांत की परिभाषा में समझे यही अपन वापरे सर्वोत्कृष्ट है ना, ऐक्य भाव है अभिन्न भाव, अभिन्न भाव मैं और तू बीच में नहीं रहता है, अच्छा इसको अभिन्न भाव कहते हैं, उतना प्रेम आता है, उतना बहुमान आता है, जिसमें भिन्नता नहीं रहती, ऐसा नहीं कहते, कभी कभी ऐसा होता है मातृ प्रेम है सबसे विशेष संसार में माना गया है और है भी पितृ प्रेम नहीं, तो कभी ऐसा होता है कि लड़के को कुछ होता है तो तबीयत माँ की बिगड़ हो जाती है, बिगड़ती है नहीं बिगड़ती, तो भगवान को तो कैसे कहती है फिर कि तुम इसको कुछ मत करो, अगर तुझे कुछ गड़बड़ करनी है तो मेरे में कर दो, इनको कुछ मत करना है, यही अभिन्न भाव है, उसको अभिन्न भाव कहते हैं, तो अपने से भी अधिक समझे होता है कि नहीं होता इस इंसान में, ऐसी बात
गाय का दृष्टांत जगत प्रसिद्ध
नाम गाय का
शेर से रह चुका शेर से सामना कर लेती
शेर से लड़ लेती है, गाय बछड़े को खाने नहीं देगी, शेर को बोले कि खाना तो तुम पहले मुझे खाओ फिर अगर तुझे भूख है तो दूसरी बात है, लेकिन इसको तो पहला नहीं खाने देंगे, इसका मतलब क्या है, अभिन्न भावना है बछड़े के प्रति, उसको अभिन्न भावना है, वो जानती है कि मैं शेर को हटा नहीं सकती सकूंगी, मेरी ताकत इतनी नहीं है, तो क्या वो देख खड़ी रहती है देखने के लिए तो कैसे खाता है बछड़े को, फिर नहीं रहेगी, पहले माथा मारेगी तो अपना सिंह बराबर मारेगी उसको, भले ही वो बलवान हो तो क्या हो गया, ऐसा भी है कि धर्मात्मा हो या शासन हो इनके प्रति कोई बलवान आक्रमण करते हो तो ऐसा जाने कि वो बलवान है, हम क्या करेंगे, वो तो बहुत है, ज्यादा है, बलवान है, शक्ति वाले हैं, उनको कमजोर है, कमजोर है, संख्या भी कम है, हमारे साथ कोई नहीं है, हम तो अकेले हैं। अरे अकेले हो तो क्या हो, वो तलवार खींचेगा खींचेगा और सामने कोई भी हो, कौन है वो देखने की बात आता ही है।
जैसे गाय नहीं देखती वैसे,
जैसे गाय नहीं देखती ऐसे,
जैसे कोई सत्पुरुष पर कोई भी इस प्रकार की आक्रमण हो, कुछ बात हो,
सहन नहीं करे
तो कैसे सहन, तो सहन करे तो वो उसका मतलब एक ही भाव से बहुत हो रहा
है, सवाल ही नहीं रहता है, ऐसा ही हो, नेचुरल है, बहुत नेचुरल है।
सत्पुरुष तो गुणा भंडार से भक्त अमर दोष में खड़ा कर आप एक तो पोते लगता मैंने एकता करो मैंने
एकता तो भगवान परम प्रेम एनी बात है, ये तो दृष्टांत है। मैं कैसे मारू, एनु माथू ना दुखे, मारू माथू भले दुखे पर एनु माथू नहीं दुखे,
ये रीते सत्पुरुष नो कहीं ना थो जो मारो चाहे कहीं थी
मेरा कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, उनको कुछ नहीं मैं मानू सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि इस ज्ञानी से, ज्ञानियों ने मुमुक्षुओं का परम धर्म कहा है, पर यह बुद्धि परम देवता को सूचित करती है, इतना विनय आता है, दीनता में नहीं आता, इतनी लघुता आती है, इतना विनय आता है, सहज ही ऐसा ही होता है,
दीनता यानी विनय।
फुटनोट में इसका अर्थ किया है परम विनय में है, परम दीनता में परम विनय पाठांतर करते हैं
बराबर इसमें
परम परमात्मा के रूप में देखता है तो
महाभारत
में कृष्ण
सब इस प्रकार के जो है उन लोगों ने तो काफी युक्तियां बहुत लगाई है, बहुत सूक्ष्म चला है इसमें भी, बहुत योग वाशिष्ठ है उसमें भी, बहुत आगे इतने दृष्टांत नहीं आते हमारे में, इतना इतना बात बात पर इतने दृष्टांत लगे कि कितना दिमाग चला है मूल संस्कृत में, योग वाशिष्ठ मूल ग्रंथ संस्कृत के में रचना है,
वाल्मीकि
મુખ્ય કારણ બને
છે વાસ્તવમાં તો પર્યાય છે તે દ્રવ નથી ને દ્રવ છે તે પર્યાય નથી, થતા બી નથી રસપ્રસ, છતાં પણ એ ભેદ અનુભવમાં નથી રહેતો, એને ઐક્યતા કહે છે, એ ઐક્યતાના દર્શન થાય છે, એટલે કે પરમાત્માના રૂપે જોવામાં આવે છે, કેમ કે પરમાત્માના આકારે રહીને પરિણમે છે, સ્વાકાર પરિણામ થઈ ગયું છે. અને દ્રવ્ય પર્યાયની ભિન્નતા જોવામાં ત્યાં દ્રવ્ય પર્યાયનો વિષય જેને બંધારણ ન સમજાય હોય એને બંધારણ સમજવા માટે છે. પદાર્થનું બંધારણ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ધી સબસ્ટન્સ इससे ज्यादा कोई प्रयोजन इसमें ये बात समझ ली. फिर तो ये भेद को विघिन करना है, भेद में तो खड़ा ही नहीं रहना है, ये आज्ञा है. तो भेद भी हमने अभेद को दिखलाने के लिए और अभेद की आराधना के लिए भेद कहे हैं. भेद की आराधना कभी नहीं करनी है, ये तो सिर्फ जानने का विषय है, आराधना का विषय है ही. एक और बात भी निकाली हुई यहां से कृपा लेते हैं कि जब ऐसी परम दीनता उदित होती है मोक्ष में, कि जिससे सर्व प्राणियों के प्रति अपना दासत्व माना जाता है, विश्व में कोई नई चीज पैदा होगी, सर्व प्राणियों के प्रति अपना दासत्व माना जाता है. सभी परमात्मा है, संभव है, सभी परमात्मा है और सभी परमात्मा की भक्ति के मैं योग्य हूँ, ऐसा परम विनय आता है. उत्कृष्ट कक्षा का ये विनय हो गया कि भागवत में तो ऐसे बहुत दृष्टांत है. जैसे पांडव का विजय हो गया महाभारत के युद्ध में, फिर वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसमें यज्ञशाला में तो बहुत ऋषि मुनि और ऐसे बहुत भक्त लोग जो हैं, धार्मिक जन बहुत पधारते हैं, इन लोगों का भोजन होता है पंडाल में, बहुत से हजारों लोग आते हैं, उनका भोजन होता है. जब भोजन पूरा हो जाता है तो श्री कृष्ण ने खुद क्या कहते हैं सालाने को, आप झाड़ू लेकर के खुद ही इनका साफ करता है. जो भी खाने में जो गंदगी होगी ऐंठ और बाहर निकल गई खाने से वो पड़ी रहती है, तो वो खुद ही झाड़ू लेकर के निकालते हैं. क्यों? कि ये तो भाई थे आपस में, मामा फुआ के, तो इसके जो लोगों के मेरे, ये तो मेरे घर वाले के प्रसंग है, उन लोगों तो व्यस्त हैं, उन लोगों तो यज्ञ में बैठना पड़ता है विधि विधान में, तो अपने विधि विधान में व्यस्त हो गए. अब ये कौन साफ करेगा? तो वो खुद ही करने लगते हैं. मैंने जो सबसे हल्का काम व्यवहार में गिना जाता है वो सबसे बड़ा करता है, ऐसी कथा
है. पतरा उपवाड़
पतरा उपवाड़े ने बच्चे साफ करे थे घर के, यहाँ से ये रीति चली है उठाने की, दूसरे काम में उठा लेना है, इसका यही उठाना है, ये गिने ही कोई हल्का काम नहीं है, लेकिन दुनिया का काम ज्ञानी दर्शन युक्ति बहुत आई है, बहुत बहुत ऐसे व्यवहार की युक्तियां तो बहुत है. जैसे जिससे सर्व प्राणियों के प्रति अपना दासत्व माना जाता है और परम योग्यता की प्राप्ति होती है, यहां से योग्यता की प्राप्ति होती है, ऐसे विज्ञानवित हुए बिना तत्व के ग्रहण करने की योग्यता की प्राप्ति ही नहीं होती है, मुमुक्षुता की प्राप्ति नहीं होती. देखिए आगे के बोल में क्या लिखे, जिससे जीव की योग्यता रुक जाती है, ऐसा कहा, इस लोक के अल्प भी सुखेच्छा. इसमें ये बात कही कि जिससे योग्यता के लिए सारी बात चली है. तीसरे में भी ये कहेंगे यही परम योग्यता की हानि है, ऐसा मैंने मार्ग प्राप्ति की योग्यता का ये सब्जेक्ट चलता है, मोक्षों के लिए परम प्रयोजन वर्तमान प्रयोजन होते हैं. जिसे मार्ग पाना हो इसकी पूर्व भूमिका किस योग्यता, किस टाइप की योग्यता उसकी होती है, ऐसा बात है.
ये प्रभु
हाँ उतावले में ऐसा करेगा, ये योग्यता पुग्यता हम नहीं जानते हैं, हम तो सौंदर्य आए इसलिए हम तो योग्य हो गए, अब तो हमको तत्व चाहिए, हमको ऐसी बात नहीं चाहिए, हमको तो तत्व चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, भक्ति नहीं चाहिए,
आत्मा की बात चाहिए, आत्मा की बात,
हमको तो आत्मा चाहिए, ऐसा आत्मा कभी गिनता नहीं है,
व्यक्तिगत बातों ना करेंगे, तत्व में बातों करेंगे,
सत्पुरुष तो व्यक्ति हो गए और व्यक्ति पूजा नहीं करना। तो हमारे मीटिंग हुई थी तो हमने बोला कि ऐसी बात हमने सुनी है, इसमें आप लोग क्या समझते हो, खुला खुला दिल से चर्चा चल रही थी, देखो विदाउट प्रेजुडाइस जिसको कह रहे हैं, गुरु की पूजा तो है, व्यक्ति की पूजा क्यों करें, इनका हमारे गुजराती में तो ये व्यक्ति पूजा और गुण पूजा में अर्थघटन ही दूसरा होता है, कि जिस व्यक्ति में गुण नहीं हो ऐसी व्यक्ति की पूजा को हम व्यक्ति पूजा कहते हैं, और जिस व्यक्ति में गुण हो इसकी पूजा को हम गुण पूजा कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति के अलावा गुण कोई आकाश में अंतर तो नहीं रहते, गुण तो किसी आत्मा में रहते हैं, और उस आत्मा और गुण तो कोई भिन्न नहीं है, ये तो इनका स्वरूप है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि व्यक्ति पूजा नहीं करना, गुण पूजा करना, लेकिन उसमें ये मतलब है कि जो व्यक्ति पूजा करता है, गुण ही व्यक्ति की पूजा करता है, उसको व्यक्ति पूजा हम कहते हैं, और भगवान की पूजा करने में व्यक्ति पूजा कतई नहीं कहते हैं। आप लोग कैसे समझते हो, सुंदर है जिसको याद में नहीं दिया मुझे कैसे समझते हो, देखते रहते हैं, अच्छा बात तो ठीक ही है, व्यक्ति पूजा और गुण पूजा तो ऐसे ही होना चाहिए, फिर आप कैसे कहते हो व्यक्ति पूजा हो जाती है, इसमें ये तो गुण पूजा ही होती है, वरना तो तीर्थंकर के नाम लेकर हम पूजा नहीं कर सकेंगे, तो आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं, हम महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, या शांतिनाथ भगवान की पूजा करते हैं, उपासना ये करेंगे कर सकेंगे, व्यक्ति पूजा हो जाएगी, ये तो बन ही नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ तो 2400 तीर्थंकर की पूजा है,
भगवान नहीं पूजा करता है, प्रत्यक्ष गुण नहीं पूजा,
सीधे सिद्धि
गुण पूजा,
सिद्धे सिद्धि गुण नहीं पूजा,
डायरेक्ट पूजा,
व्यक्ति पूजा में तो एकांत हो जाता है, व्यक्ति पूजा तो एकांत हो जाता है,
व्यक्ति पूजा मैंने कौन क्या बात
आपने बोला ना, व्यक्ति पूजा कहने का मतलब
एक में अनंत आ जाते हैं, एक ज्ञानी को वंदन करने से अनंत ज्ञानी को वंदन हो जाता है, एक ज्ञानी का अवगणना करने से अनंत ज्ञानी का अपमान हो जाता है, ऐसी बात है, एक अनंत प्रतिमा का निषेध करने से अनंत जिन प्रतिमाओं का, जिनेन्द्रों का, तीर्थंकरों का निषेध हो जाता है, तीनों काल का,
साथ ही पुतारों को निषेध भी,
पुतारों को पहला और सबों का हो जाता
है, विज्ञान से विज्ञान खोलो ना,
क्या
उनको विज्ञान खोलो ना,
वैसे ही आ ही जाता है, समाविष्ट हो जाता है, क्योंकि एक से है सब, वैज्ञानिक तौर से देखो
ये बात,
एक से है सब, भिन्न भाव तो है नहीं, सभी का स्वरूप तो एक सा ही है,
सबके गुण एक से,
सबके गुण एक से, जाति एक से, प्रगट प्रगटता भी एक से है, इसमें सब आ जाते हैं, एक में सब आते हैं, एक में अनंत आते हैं,
ऐसे एक प्रतिमा के निषेध में अनंत
निषेध है, और अनंत का निषेध हुआ भगवान का नहीं, इनके शिष्य रूप गुरु के हुए, इनके वचन रूप शास्त्र के हुए, सब के सब के हो गए, इसलिए कहते हैं कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, ये सबसे बड़ा अपराध है,
एक सत्पुरुष में देव शास्त्र गुरु सब आ गए,
सब आ गए।
और एक सतपुरुष में अनंत देव शास्त्र गुरु आ गए।
इसलिए तो ये मुमुक्षों की भूमिका में लिया, गोपाल जी ने इस बात को मुमुक्ष की भूमिका में लिया। योग्यता का ये सवाल है, ये चर्चा को सतपुरुष और भक्ति कराने के लिए नहीं स्थापित किया, न प्रतिपादन किया, लेकिन ये योग्यता के लिए है कि परम योग्यता की इससे प्राप्ति होती है। ऐसा परम विनय आने से परम योग्यता की प्राप्ति होती ही है। यह परम दीनता जब तक आवृत रहती है, जैसे दीनता उत्पन्न नहीं होती मैं तो आवृत रहेगी, स्वभाव तो है जीव का, लेकिन आवृत जब तक रहती है तब तक जीव की योग्यता प्रतिबंध युक्त होती है। यही ऑब्स्टेकल है, योग्यता में यही प्रतिबंध है सबसे बड़ा। इसलिए विनय आए आवे आवे और आवे ही आवे, परम विनय आएगा। विनय के लिए इसलिए तो बहुत बात किया है कि धर्म का मूल ही विनय है, धर्म का मूल विनय लिया है, इसका यही कारण है। ऐसा विनय आता ही है
सर्व प्राणी में दसत्व कहीं योग कहीं भाव कोमलता ना परिणाम होता हो, सरलता ना परिणाम होता हो, इसलिए ये सब प्राणी में
कसाई गल जाती है। कसाई रस है ना
जी,
तो गलने में का बहुत आसान तरीका है ऐसे कसाई गलना। ये तो वासना जैसी चीज है ना, कसाई का तो इतना भाव से जम्बे है चीज, इतना जीव संस्कारित हो गया है कसाई से, ये कसाई छूटने जैसे छूटती नहीं है। तो गल जाने रसायन है, जैसे रसायन से कोई भी जंग है वो रसायन नहीं है, वैसे घिसके नहीं निकलता है, घिसो तो भी नहीं निकलता है, लेकिन रसायन होता है फिलहाल डालते साफ हो जाता है। जैसे कोई दाग नहीं जाता है, कैसे कितना भी साबुन लगाओ, कितना भी पानी, कितना भी हो, लेकिन उसका आता है यानी एजेंट आता है केमिकल, ये रसायन है, कसाई बन
जाती है। सतपुरुष में परमेश्वर बुद्धि का ये उपलक्षण हो कि बाहर में,
बाहर में ये तो योग्यता का तो कारण है
कि बाहर में ये अन्य जीवों के प्रति,
हाँ ये तो योग्यता का ही कारण है। પરિશ્રમ ન કરવો પડે ઓર કસાઈ ગળી
જાય
પરમેશ્વર કેટલી સાટો છે, કેટલી સંકલ્પના છે, પોતાની યોગ્યતામાં આખી કશાય શક્તિ તૂટી જાય છે, કશાય રસ ગળે છે એટલે આખી કશાય શક્તિ તૂટી જાય છે, કેટલો હળવો ખૂન થઈ જાય વિનય આવવાથી, એકદમ હળવો ખૂન થઈ જાય।
જેને ગુણ પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા હોય તો જેમાં ગુણ પ્રગટેલા હોય એના ભૂતમાં રહ્યો, એના ભૂતમાં સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી, એના પ્રત્યે જ્યાં સુધી આદર બુદ્ધિ આવી નહીં આવે
ત્યાં સુધી યોગ્યતામાં પ્રતિબંધ છે, યોગ્યતાને પ્રતિબંધ
ખરેખર પોતાના ગુણ ની હાથ રુચિ થઈ નથી,
હા
એવું પરિણામ ન આવતો હોય
આ ગુણની રુચિમાંથી ગુણ ની રુચિ